सुर्खियों में
ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना अभूतपूर्व वित्तीय समावेशन के 11 वर्षों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवा विभाग के संयुक्त सचिव डॉक्टर प्रशांत कुमार गोयल और पत्रकार रुचिका चित्रवंशी।
नमस्कार, आपका स्वागत है आकाशवाणी के कार्यक्रम सुर्खियों में। वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन प्रधानमंत्री जनधन योजना ने 11 वर्ष पूर्ण किए हैं। आइए इसके बारे में और जानते हैं आकाशवाणी संवाददाता की रिपोर्ट से।
लगभग एक दशक पहले देश में हर 3 में से 2 व्यक्ति बैंकिंग सेवाओं से वंचित थे, लेकिन आज 15 वर्ष से अधिक आयु के हर 10 में से 9 भारतीयों के पास अपना बैंक खाता है। ये संभव हो पाया है प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से। प्रधानमंत्री जनधन योजना को अगस्त 2014 में शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को मुख्य धारा से जोड़ना था। इस योजना के अंतर्गत जीरो बैलेंस पर बैंक खाते खोले गए। खाते के साथ डेबिट कार्ड और 2,00,000 रुपए तक का दुर्घटना बीमा भी दिया गया। इस योजना के तहत अब तक देश में 56 करोड़ से अधिक जनधन खाते खोले जा चुके हैं। इन खातों में 2,50,000 करोड़ से अधिक की धनराशि जमा की जा चुकी है। इसे जनधन योजना की ही कामयाबी कहेंगे कि आज देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध हैं। योजना के तहत 2/3 बैंक खाते ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में खोले गए। जनधन खातों में से 56% खाते महिलाओं के नाम पर खोले गए हैं, यानी कि देश की आधी आबादी को बैंकिंग सुविधा देने में जनधन योजना का बड़ा योगदान है।
एक दशक पहले भारत के बैंक भारी संकट से गुजर रहे थे। हमारा बैंकिंग सिस्टम फ्रेजाइल था। करोड़ों भारतीय बैंकिंग सिस्टम से बाहर थे। भारत दुनिया के उन देशों में से एक था जहां एक्सेस टू क्रेडिट सबसे मुश्किल था। इस योजना ने गांव और गरीब के आर्थिक सशक्तिकरण के साथ ही रोजगार निर्माण में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। पहले देश में बहुत बड़ी संख्या में लोगों के पास बैंक खाता ही नहीं था, बेचारों ने बैंक का दरवाजा नहीं देखा था, लेकिन जनधन योजना के कारण 50 करोड़ से ज्यादा नए बैंक खाते खोल चुके हैं।
जनधन योजना और तेजी से बेहतर होती डिजिटल सेवाओं ने सरकार की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मॉडल को भी मजबूती प्रदान की है, जिससे न केवल पारदर्शिता बढ़ी है बल्कि हर तबके का सशक्तिकरण भी हुआ है।
जनधन योजना के माध्यम से हमने अमेरिका की कुल आबादी से भी ज्यादा लोगों के बैंक खाते खोले हैं, और उसके बाद यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी यानी आधार के द्वारा उन्हें ऑथेंटिकेट किया और फिर 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को मोबाइल के द्वारा कनेक्ट किया। जनधन, आधार, मोबाइल, जेम ट्रिनिटी की ये ताकत विश्व के लिए एक अध्ययन का विषय है।
जनधन, आधार और मोबाइल यानी कि जैम ट्रिनिटी के जरिए 10 करोड़ से अधिक फर्जी लाभार्थी खातों को बंद किया गया है। आज केंद्र सरकार की ओर से भेजी जाने वाली धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंच रही है और बिचौलियों की व्यवस्था पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। कोविड महामारी के दौरान जनधन खातों की उपयोगिता देखने को मिली, जब मोदी सरकार ने महिला खाता धारकों को 31,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि भेजी। प्रधानमंत्री जनधन योजना छोटे व्यापारियों और ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों के लिए काफी मददगार साबित हुई है। इस योजना ने भारत को वित्तीय समावेशन की दिशा में एक नई पहचान दी है और करोड़ों लोगों के जीवन में विश्वास और आशा की किरण जगाई है। अनिकेत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची प्रिया।
प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में और जानने के लिए आज हमसे जुड़ रहे हैं डॉक्टर प्रशांत कुमार गोयल। डॉक्टर गोयल, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में।
जी धन्यवाद।
डॉक्टर गोयल, क्या आप हमें थोड़ा सा इस बारे में जानकारी दे सकते हैं कि प्रधानमंत्री जनधन योजना इन 11 वर्षों में किस तरह का प्रभाव लाई है हमारी सोसाइटी पर, किस तरह का बदलाव देखा है आपने?
जी, जनधन योजना जब माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा शुरू की गई थी
उस टाइम हमारे देश में लगभग 7.5 करोड़ परिवार ऐसे थे जिनके परिवार में किसी भी सदस्य के पास एक भी बैंक का खाता नहीं था। तो जब भी इन लोगों के पास कोई भी सरकारी सुविधा पहुंचनी थी तो उनको कैश में पेमेंट की जाती थी और उसमें बहुत ज्यादा लीकेज होती थी। और उस टाइम की जब हम वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देखते हैं तो हमारे जितने व्यस्त लोग हैं, अडल्ट हैं, उनमें से आधों के पास ही अपना बैंक खाता था। तो उस टाइम ये मिशन मोड में काम शुरू किया गया कि हर एक परिवार के पास खाता हो। और जब ये लक्ष्य हमने 2 साल में पूरा कर लिया तो उसके बाद ये नया लक्ष्य रखा गया कि अब हमें देश के हर एक अडल्ट व्यक्ति को, वयस्क नागरिक को, उसको एक बैंक खाता देना है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पिछले 11 वर्षों में हम इस मिशन में काफी हद तक कामयाब हुए हैं और अभी हम ये बोल सकते हैं कि लगभग 94-95% जो ऐसे हमारे नागरिक हैं 18 वर्ष की आयु के ऊपर, उनके पास आज की डेट में अपना बैंक का खाता है।
56 करोड़ से ज्यादा जनधन अकाउंट्स खोले गए हैं हमारे देश में पिछले 11 वर्षों में। किस तरह के चैलेंजेस, किस तरह की मुश्किलें आई इस योजना को इम्प्लीमेंट करने में?
जी बिल्कुल, मुश्किलें तो आई। सबसे पहले मुश्किल तो यही थी कि जो बैंकिंग थी 2014 से पहले, उसमें खाता जो था वो एक मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता था, एक तो पैसा आपको अपने खाते में रखना ही पड़ता था, फिर आपका खाता खुलता था। और किसी भी गरीब आदमी के लिए बैंक में खाता खुलवाना इतना आसान नहीं था। जो बैंकिंग के हमारा सिस्टम है, प्रणाली है, वो उसी तरह से ही बनी हुई थी। तो सबसे पहले तो बैंकर्स को हमें कन्विंस करना पड़ा कि आपको इस तरह के खाते खोलने हैं जिसमें मिनिमम बैलेंस की जो रिक्वायरमेंट है, आपको जो अमाउंट उसमें रखना है वो जीरो रहेगी, बिना बैलेंस के भी आपको खाता खोलना है। तो पहला चैलेंज तो यही था बैंकर्स को इंसिस्ट करना। फिर दूसरा यह था कि अब इतनी बड़ी संख्या में परिवार हैं, इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं जिनके पास खाते नहीं है, तो उनके तक कैसे पहुंचा जाए। तो इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की गाइडेंस में हर एक जिले के जिला कलेक्टर को अप्रोच किया गया, हर एक स्टेट के जो चीफ सेक्रेटरीज हैं, बाकी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो इसको देखते हैं, उनके माध्यम से एक प्लान बनाया गया जिसमें जिला कलेक्टर को जिम्मेदारी दी गई कि इस तरह के कैंप लगवाएं। और उनकी अध्यक्षता में 2014 में ये स्कीम शुरू की गई। और उस टाइम सबके, जो मैं बोलूंगा कि सबके समन्वय के कारण और सबके कॉपरेशन के कारण ही हम जो जहां तक पहुंचे हैं आज, वो पहुंच पाए। देखिए, आज के दिन में बैंक खाता तो हमने खोल दिया है, बट काफी लोग ऐसे हैं जो अपने खाते को नियमित रूप से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं और अभी भी उनका जो लेन देन है वो ज्यादातर नगद में हो रहा है। तो हम ये चाह रहे हैं कि सभी जो ऐसे लोग हैं जिनके पास खाता है लेकिन वो खाते का इस्तेमाल नहीं कर रहे और खाता निष्क्रिय हो गया है, डोरमेंट हो गया है, उन तक हम पहुंचे, उनके खाते को वापस हम एक्टिव करें। और ऐसे लोगों को हम फाइनेंशियल लिटरेसी के माध्यम से ये समझाएं कि अगर उनको कोई दिक्कत आती है खाता ऑपरेट करने में, उनको बताया जाए कि किस तरह करना है। और इसके लिए हम टाइम टू टाइम लोगों तक पहुंच रहे हैं, RBI भी इस काम में लगा हुआ है, बैंकों को जिम्मेदारियां दी गई हैं ताकि ऐसे लोगों तक पहुंच के ये जो समस्या है इसको किया जाए। साथ में एक समस्या है कि कुछ लोगों के जो खाते हैं उसमें कोई भी बैलेंस नहीं है, जबकि ऐसे लोगों की तादाद लगातार कम हो रही है, अभी 8-8% के आसपास ऐसे लोग हैं।
इस तरह की योजना लागू करने के लिए बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही मजबूत होना चाहिए और दूर दराज इलाकों में बैंक्स की ब्रांचेस रहे, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स रहें अवेलेबल लोगों के लिए। इसके लिए आपने क्या कदम उठाए हैं?
जनधन योजना का एक बहुत बड़ा हिस्सा यह था कि जो बैंकों की अवेलेबिलिटी है, उपलब्धता है, उसको बढ़ाया जाए। जनधन योजना के साथ ही सरकार ने एक ये भी फैसला लिया कि जो भी गांव है उसके 5 किलोमीटर के अंदर हम एक बैंक लेके आएंगे या बैंक मित्र को लेके आएंगे, जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है उसकी ब्रांच खोलेंगे ताकि लोग वहां तक पहुंच सके और उसमें अपना खाता खुलवा सके। तो पिछले 10 वर्षों में मैं ये कहना चाहूंगा कि हमने बहुत इसमें प्रोग्रेस की है और आज की डेट में बहुत ही कम गांव ऐसे बचे हैं जिनमें 5 किलोमीटर के उस इन तीनों में से बैंक ब्रांच या पोस्टल पेमेंट बैंक का ऑफिस या बैंक मित्र ये उपलब्ध नहीं है। ज्यादातर हिस्सों को हम कवर कर चुके हैं। जो हिस्से बचे हैं वो ऐसे हैं गांव जहां पे या तो इंटरनेट का अभाव है या उन तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत जल्दी ही इनको भी हम कवर कर लेंगे।
एक बहुत बड़ा इस स्कीम का हिस्सा है सब्सिडी वितरण, और किस तरीके से नरेगा जैसी स्कीम्स के पैसा मिलना होता है लोगों को जनधन अकाउंट्स की वजह से, मिल जाता है, इसको आप और आगे कैसे लेके जाएंगे?
जी बिल्कुल, इस पे काम कर रहे हैं। बहुत सारी स्कीमों को ऑलरेडी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिसको हम डीबीटी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उनके माध्यम से जोड़ दिया गया है। जितनी बड़ी बड़ी स्कीमें हैं सारी डीबीटी के अंतर्गत आ गई हैं, लेकिन अभी भी सरकार ने एक सेल बनाया हुआ है जो अलग अलग विभागों से तालमेल कर रहा है कि किसी भी लाभ पात्र को कुछ भी हम बेनिफिट देते हैं तो उसको डायरेक्ट बेनिफिट जो है वो खाते में दिया जाए उसके बैंक के साथ लिंक करके। इससे ना केवल उस तक पैसा आसानी से पहुंच जाता है, बल्कि अगर रस्ते में कहीं भी पैसे की चोरी होती है, उसको जब कैश में दिया जाता तो कई बार पूरा पैसा उसको नहीं दिया जाता था, तो वो सारी चीजों से हमें मुक्ति मिल गई है।
और आपने जो पहले बात करी, जब हम मुश्किलों की बात कर रहे थे, ये जो डुप्लीकेट अकाउंट्स हैं या जीरो बैलेंस अकाउंट हैं, इनसे आप किस तरह से डील कर रहे हैं?
जी हम गांव-गांव में कैंप लगा रहे हैं। 1 जुलाई 2025 से हमने 3 महीने के लिए एक कैंपेन स्टार्ट की है कि हम हर गांव में जाएंगे, जिला प्रशासन की वहां पे जो पंचायत है, पंचायत सचिव हैं, उनकी मदद लेकर और लोगों को इकट्ठा करके उनको ना सिर्फ विभिन्न जो वित्तीय स्कीमें हैं, जो वित्तीय सुविधाएं हैं उनके बारे में बताएंगे, लेकिन साथ ही में जो ऐसे लोग हैं जिनका खाता निष्क्रिय पड़ा हुआ है तो उनका KYC करवाकर उनके खाते को हम चालू करेंगे। उनके खातों में अगर कहीं पे नॉमिनेशन नहीं है तो उनका नॉमिनेशन भी हम ले लेंगे। तो ये कैंप इन प्रोग्रेस में है, ये अभी 1.25 महीना और चलने हैं। तो मैं ये बोलूंगा कि आपके मंच के माध्यम से कि जहां जहां भी इस तरह के कैंप लगने हैं पंचायत के द्वारा बताया जाएगा, और जो जो भी लोग हैं, जो गांव के लोग हैं जिनको किसी भी तरह की फाइनेंशियल प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेनी है या कोई ऐसी समस्या है, वो जरूर इन कैंपों में जाएं, और इन कैंपों में जो वहां पे बैंकर्स हैं या बाकी सरकारी लोग मौजूद हैं उनकी मदद से अपनी जो समस्या है उसका निपटान करें।
जी मुझे यकीन है हमारे श्रोता आपकी बात ध्यान से सुन रहे हैं और इस योजना का पूरा पूरा लाभ उठाएंगे। एक सवाल और मैं जो आपसे पूछना चाह रही हूँ वो है, जैसे भारत की अध्यक्षता में जब G20 यहाँ किया गया था तब हमने काफी बाकी देशों को अपनी इन योजनाओं के बारे में बताया था, पीएम जनधन योजना भी उसमें से एक थी, कि कैसे हमने फाइनेंशियल इंक्लूजन अचीव किया है अपने देश में। क्या और देश भी हैं जो हमसे सीख ले रहे हैं या हमारे साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं कुछ सिमिलर करने का अपने अपने देशों में, और हम किस तरह से उनकी मदद कर रहे हैं?
जनधन योजना की जो सफलता भारत ने पिछले 10 सालों में ली है ये पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। इनफैक्ट जो वर्ल्ड बैंक जो है उसकी एक रिपोर्ट आई थी, उन्होंने बोला था कि जितना बैंक अकाउंट हमने जनधन योजना के तहत पिछले 10 साल में खोले हैं किसी भी दूसरे देश को ये कार्य करने के लिए 47 साल का समय लगना था। तो वो बहुत उन्होंने तारीफ की कि जो भारत ने इसको मिशन मोड में चलाया, तो ये एक सीख है बाकी दुनिया के ऐसे देशों के लिए जिनमें अभी भी बैंक खातों की उपलब्धता एक मेजर समस्या है। वर्ल्ड के जो दूसरे देश हैं वो हमसे प्रेरणा ले रहे हैं और जनधन योजना की जो सफलता है और इसको किस तरह से अंजाम दिया गया उससे वो सीख ले रहे हैं।
डॉक्टर गोयल, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि 1 दशक से ऊपर इस योजना को हो गया है, आने वाले 5 सालों में आप क्या देखना चाहेंगे? क्या कोई ऐसे गोल्स हैं जो आपने अपने लिए सेट किए हैं?
जी बिल्कुल, हमने जो अपना अगला पड़ाव इसके लिए फिक्स किया वो ये है कि कुछ लोग जो लगभग 5 या 6% के लगभग हमारे नागरिक हैं उनके पास आज भी बैंक खाता मौजूद नहीं है, तो ऐसे सब लोगों तक हम पहुंचें और उनको कन्विंस करके मोटिवेट करके उनका एक बैंक खाता खुलवाएं। एक तो ये गोल है ताकि हम बोल सके कि हमारे देश में कोई भी ऐसा नागरिक नहीं है जिसके पास अपना बैंक का खाता मौजूद नहीं है। दूसरा गोल ये है कि जिन लोगों के खाते निष्क्रिय हैं उनको हम फिर से एक्टिव करें, जिन लोगों की बचत नहीं है खाते में उनको हम इस तरह के तरीके बताएं जिससे वो धीरे धीरे करके अपनी सेविंग डेवलप कर सके, और जिन लोगों की सेविंग है उनको फर्दर वो कैसे उस सेविंग को अपना और ज्यादा कारगर तरीके से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे उससे और ज्यादा इनकम कर सकते हैं, तो ये सब चीजें लोगों तक पहुंचाएं। और जो हमारा सोशल सिक्योरिटी नेट है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, कैसे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन स्कीमों में एनरोल करें।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गोयल आज हमसे जुड़ने के लिए और इतनी सारी जानकारी हमारे श्रोताओं को देने के लिए।
जी बहुत बहुत धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री जनधन योजना अभूतपूर्व वित्तीय समावेशन के 11 वर्षों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवा विभाग के संयुक्त सचिव डॉक्टर प्रशांत कुमार गोयल और पत्रकार रुचिका चित्रवंशी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
सुर्खियों में